Godlywood Studios presents Brahmakumari's podcast. समाधान बीके सूरज भाई के साथ।
नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, इंसान और भगवान में एक बड़ा अंतर है। इंसान देकर कभी भी भूलता नहीं और भगवान देकर कभी भी याद नहीं करते। कितना बड़ा अंतर है ना। लेकिन फिर भी हम इंसानों को तो याद करते हैं, लेकिन जो देकर कभी भी मतलब याद नहीं रखते और साथ ही हमें देते ही रहते हैं सतत, उन्हें हम भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक बार हमारे यहाँ पारिवारिक मित्र थे, वो आया करते थे और हमेशा ही भोजन पे बुलाया करते थे। पिताजी ने कहा कि चलो तुम चले जाओ, तो मैं एक दो बार वहाँ उनके यहाँ भोजन पे चला गया। अब एक बार कुछ ऐसा प्रसंग आया, बातें कुछ होती ही हैं, तो उन्होंने बात बात में ये बात कह दी कि देखो तुम लोग आते हो हमारे घर में, खाना खाते हो आदि आदि इत्यादि। ये बात सुनकर के मेरी आंखें सजल हो गईं। इसलिए नहीं कि उन्होंने ये बात हमें कह दी कि तुम हमारे यहाँ आते हो भोजन करते हो, लेकिन इसलिए सजल हो गई परमात्मा को याद करके कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से भगवान मुझे खिला रहे हैं, मेरी पालना कर रहे हैं, हर प्रकार से मुझे सब प्रकार की चीज़ें दे रहे हैं। और उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की मुझसे कि मैंने तुम्हें संसार में भेजा, तुम्हें मैं खिलाता हूँ, तुम्हें सब कुछ दे रहा हूँ और फिर भी तुम मुझे याद नहीं करते, फिर भी तुम मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलते। कितना बड़ा अंतर है ना। सचमुच वो सब कुछ देते हैं और फिर भी हमसे कोई शिकायत नहीं करते, कोई अपेक्षा नहीं रखते, लेकिन इंसान बहुत थोड़ा सा देता है और जीवन भर अपेक्षा रखता है कि ये मेरे साथ ऐसा करें। तो मित्रों, हम सबको बहुत गहराई से सोचने की बात है, क्योंकि तब पे हमारी लगातार चर्चा हो रही है। तो वो ईश्वर तब हमें उस ईश्वर के नज़दीक ले जाते हैं जो सतत हमें देते हैं, हमारी भलाई चाहते हैं, हमारी उन्नति चाहते हैं। तो क्यों ना हम अपनी आप को उनके आगे अर्पित करें, तप के माध्यम से उनके और नज़दीक पहुंचे, उन्हें समझें, उन्हें जानें, ताकि हमारा जीवन भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता चले और हम उनके प्यार में मग्न रहा करें। ऐसे सुंदर बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। भ्राता जी, जब उसकी बात करते हैं तो सचमुच कितने उपकार किए हैं उन्होंने हम पे और कितना कुछ दिया है, लगातार दे रहे हैं, फिर भी मन दुखी हो जाता है कि क्यों हम उसे भूल जाते हैं जो हमें इतना प्यार करता है।
ये ठीक ऐसे ही है जैसे संसार में माता पिता अपने बच्चों की कितनी पालना करते हैं
जी।
माँ को यदि देखो जन्म देने से और जब तक वो अच्छी तरह बड़ा हो जाए, क्या क्या करती है उसके लिए। रात को भी जागती है, उसके आंसू भी पहुंचती है, उसकी सफाई भी करती है गंदगी की, फिर भी बहुत खुश रहती है ना। माँ बाप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं बच्चों के लिए और बच्चे बड़े होकर क्या कहते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया, लात मार देते हैं, सब पर पानी फेर देते हैं। ठीक यही स्थिति यहाँ है। वो हमारे माता पिता हैं और वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें एहसास भी नहीं है कि वो हमारे लिए क्या क्या करते होंगे। और जिनका उनसे नाता है, जिन्होंने उनको अपना बनाया है, जो उससे योग युक्त रहने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी तो वो निरंतर केयर करते हैं, पालना करते हैं, उन्हें सब कुछ प्रदान करते रहते हैं, उनकी कमियों को मिटाते हैं, उन्हें शक्तियाँ देते हैं। फिर भी कुछ मनुष्य आत्माएं उनके इस उपकार को, उनकी दी हुई इस गिफ्ट को जानते नहीं, स्वीकार नहीं करते, बल्कि कभी कभी तो अहम में आ जाते हैं कि मैंने ये किया, हो रहा है ऊपर से, और नीचे वाले उछल कूद करने लगते हैं, वाह रे मैं। तो ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। जो साधक या जो मनुष्य अपने को परम पिता के समक्ष समर्पित कर देता है, वो ज्ञान का सागर, वो सर्वशक्तिवान उसे यूज करता है महान कार्यों के लिए, और जिसने मैंपन की दीवार खड़ी कर ली है उसे वो यूज नहीं करता है। इसलिए समर्पण भाव साधनाओं के मार्ग में, भक्ति के मार्ग में भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज रही है।
जी जी जी, पता जी सचमुच जब कभी इन उपकारों को हम याद करते हैं या थोड़ा सा भी एकांत में बैठते हैं और विचार करते हैं कि उन्होंने हमें कितना कुछ दिया है, तो सचमुच मन बहुत भक्ति भाव से भर जाता है, प्यार से भर जाता है। लेकिन फिर बहुत दुख होता है कि हम जब कार्य में आते हैं तो उसे भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हम निरंतर कैसे उसकी याद में रहें, कैसे उसे साथ लें, ये कैसे संभव हो। कृपया इस पे थोड़ा प्रकाश डालें।
बिल्कुल, जैसे आप बोल रहे थे मुझे भी याद आ रहा था
जी
कि मुझे तो बहुत कुछ मिला है ऊपर से। मैं तो ये कह सकता हूँ कि इस जीवन में मेरी तो पालना ही भगवान के द्वारा हुई है और उसने अनेक टैलेंट्स, अनेक शक्तियां, अनेक वरदान प्रदान किए हैं, योग्यताएं भरी हैं। मैं तो जब बैठ के उन चीजों को याद करता हूँ कि भगवान ने हम पे क्या उपकार किए, तो सचमुच मन बहुत भावुक हो जाता है और दिल करता है उसके प्यार में डूबे ही रहें, उसके अलावा कुछ दिखाई ना दे। जिसने हमारे लिए सर्वस्व किया है, जिसने हमें सर्वस्व प्रदान किया है, श्रेष्ठ बुद्धि दी है, श्रेष्ठ चिंतन दिया है, सत्य ज्ञान दिया है, अनेक शक्तियां, कितनी जगह तो उसने मदद कर दी। मेरे को तो सबसे सुंदर अनुभव है वो सुप्रीम सर्जन है और कैसे वो मुझे शारीरिक व्याधियों में मदद करता है, ये तो चमत्कारिक अनुभव होते हैं। परंतु मनुष्य क्योंकि संसार में है, उसके पास अपना देह है, देह की कॉन्शियसनेस रहती है, देह भान बढ़ा रहता है, उसकी अनेक जिम्मेदारियां, उसके अनेक व्यर्थ चिंतन, उसकी परेशानियां, चिंताएं उससे ऊपर से नीचे ले आती हैं। बार बार उसका ध्यान अपनों की ओर चला जाता है, जो अपना है उसकी ओर से जरा हटता रहता है। इसके लिए थोड़ी अच्छी साधनाओं की जरूरत होती है, मनुष्य को एक सुंदर प्लानिंग की जरूरत होती है और अपने लिए और इन साधनाओं के लिए थोड़ा सा समय देने की जरूरत होती है। लोग क्या कर रहे हैं कि इतनी व्यस्तता हो गई है कि अपने लिए या जो ये असली चीज है जिससे हमारा जीवन गोल्डन बनेगा, जिससे बहुत सुख में संसार हमारा हो जाएगा, उसके लिए वो थोड़ा थोड़ा समय भी देना नहीं चाहता। कहीं देना नहीं चाहते, कहीं बिजी लाइफ के कारण देते नहीं, दे नहीं पाते, लेकिन हमें इसके लिए समय देना चाहिए। और बहुत सारी चीजें हमारे परम पिता के पास हैं जो हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं। 10-10 मिनट भी 3-4 बार यदि दिया जाए और एक सुंदर चिंतन किया जाए मन में, तो हमारा लिंक उससे जुड़ा रहेगा।
इस प्रकार हमारी याद सतत हो जाएगी, क्योंकि कामना यही रहती है कि और सब कुछ भले भूल जाए लेकिन उनकी याद ना भूले, ये कामना रहती है, लेकिन संभव नहीं हो पाता। आपने ये 10-10 मिनट का अभ्यास बताया व्रता जी, शायद ये बहुत मदद करेगी, हम जरूर करेंगे। दूसरी विशेष बात व्रता जी, जैसे आपने कहा कि जैसे माता पिता हमेशा ही बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं या मतलब करना चाहते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन बच्चे शायद उस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाते। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भगवान हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, बहुत कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उस चीज़ का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो कौन सी ऐसी दीवार है जिसके कारण हम उनके प्यार को, उनकी शक्तियों को, उनकी आशीष को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं?
एक असली चीज जिसकी चर्चा हम कुछ समय पहले कर चुके हैं और वो एक विशाल विषय है, व्यर्थ विचार। व्यर्थ विचार हमारी सब चीजों को डाइवर्ट कर देते हैं, हमारी फीलिंग्स जो गुड होती हैं उनको बैड कर देते हैं, हमें निगेटिव कर देते हैं, हमें संसार के कई तरह के अननेसेसरी चिंतन में ले जाते हैं। तो इन व्यर्थ संकल्पों से अगर मनुष्य मुक्त हो जाता है, अपने को कुछ विशेष संकल्पों का लक्ष्य देकर जीवन यात्रा पे चलता है, तो ये मार्ग सरल हो जाता है।
मतलब एक लक्ष्य की आवश्यकता होगी जिसके माध्यम से ये सब कुछ सरल हो जाए, क्योंकि एक बात विशेष लगती है व्रता जी कि वो देना चाहते हैं लेकिन हम नहीं ले पा रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि कैसे वो चीज ले। तो अब शायद एक लक्ष्य बनाने की और थोड़ा समय देने की आवश्यकता।
अभी मैं एक गुहे बात भी संबंध में कहना चाहूंगा, उसे जो कुछ हमें देना है वो आएगा हमारी बुद्धि में, और सवेरे के समय विशेष रूप से हमारे परम पिता जो सागर हैं, सागर के समान हैं, अथाह खजाने जिनके पास हैं, अथाह शक्तियां और वरदान हैं, वो सवेरे के समय हम सबका आह्वान करते हैं ऊपर, क्या हो मेरे बच्चे, मुझसे जो चाहे ले लो। मैं तो ये कहूँगा इस ब्रह्म मुहूर्त में वे भोलेनाथ बनकर बैठते हैं, बिल्कुल राजी रहते हैं अपने बच्चों से, जो उनके पास पहुंच जाए वो उनसे मनचाही शक्ति वरदान सिद्धि प्राप्त कर ले। लेकिन जरूरत इस चीज की होती है, इम्पोर्टेंट बात, कि बुद्धि की लाइन क्लियर हो, यानी संपूर्ण एकाग्रता हो। जैसे हम और आप बैठे हैं, बिल्कुल एक दूसरे में मगन है ना, हम और बाहर का कुछ नहीं सोच रहे, ना आप सोचेंगे ना मैं सोचूंगा, तब तो हमारा कार्य सफल होगा। भगवान के भी सम्मुख पहुंच जाए, और वो और मैं, और फिर मैं भी नहीं केवल वो, इसमें अगर हम मातलीन हो जाए कुछ समय के लिए, और एक श्रेष्ठ संकल्प हमारे मन में हो जो हमें पाना है, मांग नहीं, जो हमें पाना है, तो वही मिल जाएगा। बस जरूरत यह है कि बुद्धि की बहुत अच्छी एकाग्रता और बुद्धि की स्वच्छता चाहिए, जिसे हम कहते हैं बुद्धि हमारी रिफाइन हो जाए तब वो डिवाइन हो जाएगी, और फिर उससे सब कुछ प्राप्त होगा।
बिल्कुल, एक प्राप्ति की बात होती है व्रता जी, और एक बात जो कई बार आप कहते हैं कि आपके पास जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एक बात की जय छोटे बच्चे से यदि कोई चीज़ नहीं संभल रही होती है तो अपने पेरेंट्स को दे देता है, माँ को दे देता है कि भाई ये बहुत बोझिल लग रहा है, आप संभालो। तो वैसे ही आपने कभी चर्चा की थी कि हमारे पास भी जो समस्याएं आ रही हैं, बातें आ रही हैं, जो परेशान कर रही हैं, हम ईश्वर को दे सकते हैं और वो ले लेते हैं और हम हल्के हो जाते हैं। तो ये अनुभव कई बार नहीं हो पाता कि हमने उनको दी तो सही, लेकिन अब भी हम अपने आप को बोझिल अनुभव करते रहते हैं, तो ये क्यों ऐसा होता है?
देखिए, जैसे एक बच्चा, मान लो उसके मन में कोई चिंता है, उसको कोई भय सता रहा है, वो अपने फादर मदर को कहता है कि ये है। अब वहां ये होगा कि फादर मदर एक्टिव हो जाएंगे उसको मदद करने के लिए। मान लो कोई व्यक्ति उसको सता रहा है जब वो स्कूल में जाता है और वो इससे डरा हुआ है, तो अब उसको निश्चिंतता होगी और माँ बाप उसका सब कुछ ध्यान देंगे, केयर करेंगे, जो कुछ करना है वो माँ बाप करेंगे। यहाँ बच्चे को अपने माँ बाप पर बहुत विश्वास होता है कि उन्हें बता दिया तो वो करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बताने के बाद भी भयभीत होते हैं, जिनके मन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ इतनी भर गई है कि वो डरा रही है। मान लो वो अब आएंगे नहीं व्यक्ति, लेकिन ये डर रहा है। ऐसे ही जब हम रात को विशेष रूप से सोने से पहले ये काम रात को करना चाहिए, 15 मिनट अच्छा योग अभ्यास करें, जैसे हम अपने परम पिता से, शिव बाबा से जुड़ गए, और फिर अपने मन की वो सच्ची बातें उनके सामने रख दें, इससे पहले हमने उसको अच्छी तरह से अपना बनाया हो, जो मैं एक बात कहा करता हूँ, उसको अपने परिवार का हेड बना दो, मालिक बना लो, और फिर सच्चे मन से उसके आगे रख दो, चाहे लिख दो, एक कागज पर लिखो और उसको समर्पित करो कि बाबा ये आपको अर्पित है, और फिर जरूरत इस चीज की है कि उनकी शक्तियों में हमें विश्वास हो। अब हम सो जाएं निश्चिंत होके कि हमने उसको दे दिया है जो सर्व समर्थ है। सवेरे हम निश्चिंत होकर योग अभ्यास करें, उस समस्या का समाधान हमारी बुद्धि में आ जाएगा, क्योंकि बाबा ने ये बात कह दी है कि जब बच्चे रात को अपनी समस्या मेरे सामने रख देते हैं तो अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं उस समस्या का हल बच्चों को देता हूँ। लेकिन कई आत्माएं अपनी बुद्धि को फिर उन संकल्पों में एंगेज रखते हैं, इसलिए उस हल को कैच नहीं कर पाते। फिर बाबा ने कहा, फिर बाबा दूसरी बार उस समय पर जब समस्या आ रही है फिर समाधान टच करता है, अगले दिन फिर करता है। देखिए कितना बड़ा उपकार है ये। नहीं तो वो ये भी सोच सकता है, ये तो मेरी सुनते नहीं, आप ही परेशान हो रहे हैं, छोड़ो। लेकिन वो कई बार समस्याओं का समाधान देता है, बल देता है, एक गाइडलाइन देता है। अगर हम बिल्कुल उसमें विश्वास करके चित्त को शांत कर लें तो फटाफट समस्याओं का हल होगा। और बाबा ने ये भी एक बात कही है, हमें इस बात में विश्वास रखना चाहिए कि बच्चे जब सच्चे मन से अपनी बातें बाप को अर्पित करते हैं तो 90% तो बाबा अपनी शक्तियों से ठीक कर देता है, केवल 10% छोड़ता है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम पुनः पुनः उसको सोच 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 बढ़ा बढ़ा के फिर 100 कर देते हो।
10% हमारे लिए छोड़ते हैं शायद इसलिए कि हम भी सशक्त हो जाएं या अच्छे अनुभव कर लें। तो ब्रता जी, ये जो रात को लिखना है, क्या हम किसी पेपर पे लिख के कहीं रख दें और उसके बाद सुबह जब आप कह रहे हैं कि वो टचिंग कराते हैं, तो कितने बजे उठ के कैसे बैठें, क्या विचार करें, मन में कोई विचार ना हो, कैसे वो रिसीव हम कर पाएंगे?
रात को सोने से पहले हमने कागज पर रख दिया, लिख दिया और बस बाबा को दिखा दिया कि ये है हमारी समस्या, वो तो लिखते हुए ऊपर हो पहुंच गई और अब आप इसको संभालना। और फिर सवेरे हम 3:30 उठे, 4:15 उठें, अच्छा योग अभ्यास करें। अच्छा ये हो कि उस समस्या को हम भूल गए हों तो सबसे सुंदर होगा। जी, जी। और अगर हमें वो याद आ रही हो, टक टक कर रही हो बार बार बुद्धि में, तो हम उसे लाइट करके बाबा से बातें करें, उस समस्या के बारे में नहीं, एक आनंद पूर्वक मिलन करें उससे, और फिर उस पर अपनी बुद्धि को एकाग्र कर दें, उसकी वाइब्रेशंस को रिसीव करने लगे कुछ क्षण में। और हम ये ना सोचें अभी क्या समाधान बाबा दे रहा है, उसको हम न रखें सामने, आप ही आगे पीछे आधे घंटे बाद, स्नान कर रहे तब, ईश्वरीय महावाक्य सुन रहे तब, वो बात हमारे पास आ जाएगी,
आ जाएगी।
ये हम उन पे छोड़ें कि वो कब देता है।
हाँ 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 जी, लेकिन ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल में कि जब कोई बात आई हुई होती है ना, तो मन ज्यादातर उसी में उलझा हुआ होता है, ये करें तो शायद बेहतर होगा, ये करें तो शायद बेहतर होगा, ये करें तो शायद बेहतर होगा, तो ये वाले विचार ना चलते ही रहते हैं। टोटली मुक्त हो जाए ऐसा तो बहुत कम ही होता है, तो ऐसे में कैसे?
बिल्कुल नेचुरल सी चीज है, कोई बड़ी बात मनुष्य पर छाई हो तो छाई रहती है। इसके लिए कुछ ईश्वरीय महावाक्यों की स्टडी कर लें सोने से पहले और सवेरे उठकर भी, तो उन महावाक्यों में कुछ ऐसी अच्छी बातें मिल जाती हैं जो हमारी उन समस्याओं को हल्का कर देती हैं। क्योंकि सत्य यही है, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। सब जगह ये देख लें, बहुत लोगों को इतना सोचने की आदत है कि बात तो बहुत छोटी है, और वो सोच सोच के फिर इस दुविधा में ये करूं ये करूं ये करूं। तो जब बाबा अपनी समाधान हमें देंगे या कोई बात टच कराएंगे, तो वो इन सब में मिक्स हो जाएगी, फिर हमें एक क्लियर गाइडलाइन मिल नहीं पाएगी। इसलिए कुछ ईश्वरीय महावाक्यों का अध्ययन हम कर लें, रात को भी और सवेरे भी। कोशिश ये करें, लक्ष्य ये हो कि उस समस्या का, उस चिंता का, उस बड़ी बात का जो दिमाग पर एक बहुत ज्यादा असर हो गया है कि नींद में भी वही चलेगी, सोने भी नहीं देगी वो, उसको हम हल्का करें
जी।
और फिर सोते हुए भी हम ये एक आदत बना दें कि अब बाबा की गोद में सो रहे हैं, बाबा का आह्वान कर लें और बाबा भी हमारे साथ सो रहे हैं, हम उनकी गोद में विश्रामी हो गए हैं। तो कोशिश ये करनी है कि उसका जो एक भारी इफेक्ट है वो लाइट हो जाए।
बिल्कुल, एक बात मैंने पहले भी आपसे ब्रता जी जब हमारी ये तपस्या की चर्चा चल रही है तो पूछी थी कि ये बात कई बार क्लियर करना या समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये परमात्मा ऊपर से समाधान मुझे दे रहे हैं या ये मेरे अपने ही मन की उपज है। यहाँ बहुत ज्यादा दिक्कत, दुविधा या कंफ्यूजन की स्थिति आ जाती होगी ऐसा मुझे लगता है, इसे स्पष्ट रूप से कैसे समझा जाए?
बिल्कुल, ये आती है बहुतों के सामने, क्योंकि जब मन में अपने विचार चलते रहते हैं तो जैसे मैंने कहा बाबा की जो फीलिंग्स है वो भी इसमें मिक्सअप हो जाती है, और इसमें मनुष्य फिर परेशान होता है, ये मेरी या ये बाबा की। लेकिन अगर हम अपने चित्त को शांत कर लें तो बाबा की गुड फीलिंग इतनी स्पष्ट हमें आएगी कि हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये मेरी है या शिव बाबा की है, वो ऊपर से आई है, ये क्लियर फीलिंग हमें होने लगेगी। दूसरी बात मैंने तब भी सजेस्ट की थी कि दो हम कागज की चिटकी बनाएं, एक पे यस लिखें, एक पे ना, और मोड़ तोड़ के ऐसे वैसे करके गिरा दें, और फिर याद में बैठें 10 मिनट और आंख बंद करके उठा लें एक, जो उत्तर आए यस और नो उसको फॉलो करें, तो इससे भी बाबा की बहुत मदद
मिल जाती है। अब रहते जी एक चीज, ये एक नई युक्ति मुझे लग रहा है कि अब तक जो हमारी लंबी चर्चा हुई है उसमें से मिल रहा है हम लोगों को समाधान के लिए, कि रात को हमने पत्र लिखा, सुबह आपने कहा कुछ विचार ना करें, अच्छा योग करें। हमारे बहुत सारे भाई बहने जो दर्शक हैं वो अभी योग की शुरुआत कर रहे हैं, योग की वो जो अच्छा योग है या गहन योग है वहां तक शायद नहीं पहुंचे हैं। तो मान लीजिए वो आधे घंटे योग कर रहे हैं 4 बजे उठ करके, 4:30 उठ करके, तो उस आधे एक घंटे के योग में फिर क्या करें ताकि अच्छा योग हो जाए, फिर उनको ये टचिंग प्राप्त हो।
पहले तो मैंने पहले भी कहा है कि हम अच्छे गीत सुन लें शिव बाबा के
जी,
कमेंट्रीज बनी हुई है हमारी वो चला लें, आजकल पीस ऑफ माइंड पे भी सवेरे ही बहुत अच्छे विजन्स आने लगते हैं, उन्हें देखकर करें। लेकिन मैं एक दो छोटी सी विधि बता रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इस देह से अलग हूँ, इस देह की मालिक हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकाश चारों ओर फैलता है। और फिर आत्मा के एक एक गुण का चिंतन करें, एक एक गुण पर एक एक मिनट दें। मैं शांत हूँ, शांति तो मेरा स्वभाव है, ये सच है कि मैं आत्मा तो शांत हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं पूरी तरह शांत हूँ। इसको इस तरह लाएं कि अंतर्मनि से स्वीकार करें कि यू आर पीसफुल। फिर दूसरा गुण ले लें, मैं सुख स्वरूप हूँ, सुखी रहना मेरी नेचर है, ये दुख पराई चीजें हैं, मैं आत्मा सुखों के सागर की संतान संपूर्ण सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। फीलिंग में जाने दें इसको, ऐसे ही पवित्रता शक्ति यहाँ से शुरुआत करें। रटे नहीं केवल, उसे स्वीकार करने लगें। स्वीकार करने से हमें उसकी गुड फीलिंग होने लगेगी, अनुभव होने लगेगा
जी।
और फिर एक बहुत अच्छी चीज इन साधनाओं में है, 5 स्वरूपों का अभ्यास, वो सभी सीख भी लें। हमारा पहला स्वरूप है अनादि आत्मा, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे। दूसरा हमारा स्वरूप है कि जब हम इस सृष्टि पर आए थे तो हम देव स्वरूप में थे, और हम 2500 साल देव स्वरूप में जन्म लेते रहे। उस स्वरूप को सामने देखें, कितने श्रेष्ठ, कितने पवित्र, कितने गुणों से युक्त, नैतिक मूल्यों से युक्त, शक्तिशाली हम थे, डिवाइन एकदम पवित्र। उस स्वरूप को देखें। भक्ति में हम पूज्य स्वरूप में रहे, उसे देखें। अब हम भगवान के बच्चे बने हैं और अब हमें बनना है फरिश्ता, इसका थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे सभी नए। और फिर इन 5 स्वरूपों का अभ्यास एक बार इन्हें याद करें, फिर दूसरी बार थोड़ा ज्यादा समय याद करें, फिर तीसरी बार एक एक मिनट एक एक को याद कर लें, तो मन पर ये सब छा जाएगा और बाकी चीजें समाप्त हो जाएंगी। इसमें उस स्वरूप को देखना भी है, उसके बारे में अच्छे विचार भी करने हैं, चिंतन और दर्शन, थिंकिंग एंड विजुअलाइजिंग दोनों करना है। ये 2 चीजें अगर सवेरे करेंगे तो सभी को, चाहे वो योग में बिल्कुल नए हैं या बहुत समय से योग अभ्यास कर रहे हैं, सभी को बहुत सुंदर अनुभूति होगी। जो लंबे समय से कर रहे हैं उनका चिंतन और डीप होता जाएगा और अनुभूति गहन होती जाएगी, इससे सुंदर अनुभव होंगे
जाएगा। जी जी, बहुत सुंदर बात आपने करी बात जी। वैसे पीस ऑफ माइंड चैनल में भी सुबह बहुत अच्छा योग होता रहता है और उसमें चिंतन और ये विजन दोनों ही होते हैं जैसे आपने कहा है, और साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी इसका वो अभ्यास कर सकते हैं। प्रति जी, चलते चलते वक्त थोड़ा कम है, क्या कोई ऐसा अनुभव आपका व्यक्तिगत या लोगों का ऐसा आया है जिन्होंने ऐसा ही ठीक किया कि रात को उन्होंने अपनी समस्या लिख के रख दी, प्रभु को अर्पित की, और सुबह जब उठे योग किया तो बहुत सुंदर उसकी टचिंग मिल गई और समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई।
मैं अपने ही बात कहूँगा, जो शारीरिक बीमारियों में मुझे बहुत कुछ होता रहा है, तो रात को मैं बाबा को इस तरह याद करता हूँ कि यू आर सुप्रीम सर्जन और आपके होते और मुझे ये तकलीफ तो मैं कहता हूँ अब करो कुछ, तुम करो। और सवेरे जैसे ही मैं उठता हूँ मैं उस बात को भूल ही जाता हूँ कि मैंने कुछ कहा था रात को, क्योंकि हम बीमारी की कॉन्शियसनेस में तो रहते नहीं है। ठीक है, ये बीमारी देखो है, छोटी मोटी आई है, खत्म हो जाएगी, जो बुखार हुआ है क्या हुआ जाएगा। सवेरे कोई बात याद आ जाएगी, कोई व्यक्ति को भेज देगा बाबा और वो हमें ठीक कर जाएगा। मुझे एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर में बड़ा अच्छा विश्वास और अनुभव है, मेरा हाथ आप ही चलने लगेगा कहीं और वो पॉइंट दबने लगेगा और मैं देखूंगा मैं तो ठीक हो गया हूँ, ये मैं मुझे तुरंत लगता है ये ऊपर से काम हो रहा है। ऐसे बहुतों को ऐसा होता है कि सवेरे उठ के गुड फीलिंग हुई कि उस व्यक्ति के पास जाओ, बस वहाँ गए और समस्या हल हो गई। तो इस तरह बस हमें विश्वास और बुद्धि की लाइन को क्लियर रख कर यदि इस तरह का हम साधना करेंगे तो हर चीज का हल मिलेगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, बहुत सुंदर प्रकाश आज मिला है और एक नया तरीका, एक नई युक्ति मिल गई है कैसे हम अपनी समस्या को सहज रूप से समाधान कर सकते हैं। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, एक नई चीज लगी ना, हम लोग लंबे समय से साथ साथ हैं, हम साथ मिलते हैं, बात करते हैं, आप भ्राता जी को सुनते रहते हैं, लेकिन ये एक नई चीज आज मुझे लगी कि सचमुच यदि कोई समस्या हमारे जीवन में चल रही है, लगातार चल रही है, कुछ समाधान नहीं हो पा रहा है, रात को बहुत अच्छी तरह से परमात्मा को याद करके उनके सम्मुख पत्र के रूप में उसे हम रख दें और सुबह उठ करके जब हम ध्यान करें, योग करें, तो परमात्मा से हमें उसका समाधान प्राप्त हो जाएगा। इसका हम अनुभव अवश्य करें, क्योंकि लगातार हमारी बात हो रही है कि ये हमें करना होगा, करके देखना होगा, और जैसे जैसे हमारे अनुभव बढ़ते चले जाते हैं हम उस ईश्वर पिता के और नज़दीक पहुँचते जाते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत की थी, सचमुच माता पिता का बहुत प्यार होता है ना, कौन ऐसे माता पिता होंगे संसार में जो अपने बच्चों को तकलीफ में देखना चाहते होंगे। आप सब भी माता पिता हैं, ज़्यादातर हमारे दर्शक, आप अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, शांति में देखना चाहते हैं, उनको इतना बड़ा देखना चाहते हैं जितने बड़े आप खुद भी नहीं हो पाए हैं। तो परमात्मा भी हमारे लिए ऐसी ही फीलिंग सचमुच रखते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा खुशहाल हों, शांति में रहें, जीवन का भरपूर आनंद लें। और उनकी मदद, उनकी शक्तियां भी हमें मिलती हैं, लेकिन वो बैरियर जिसकी भी आज चर्चा हुई है, उस बैरियर को शायद हमें हटाने की आवश्यकता है ताकि हम उस चीज़ को अनुभव कर सकें। तो परमात्मा के बहुत बहुत नज़दीक पहुंचते चलें ताकि उनके प्यार को, उनकी आशीष को अनुभव करें। और एक बात हमेशा की मैं चर्चा करता हूँ आप लोगों से, और लंबे समय से लोग इस बात को कहते भी रहे हैं कि हम सब भगवान को मानते तो हैं, लेकिन भगवान की कितना मानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। इस पे विचार जरूर करना चाहिए। वो हमसे सब कुछ दे रहे हैं, हमें, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम उनकी आज्ञाओं पे चल रहे हैं, क्या हमें उनकी आज्ञाओं पे नहीं चलना चाहिए, ये भी प्रश्न हम अपने आप से पूछें ताकि सचमुच हम उनकी ओर चलते हुए उनको अनुभव कर सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। इस चर्चा को, सुंदर चर्चा को, प्रभु चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में हमारे साथ। नमस्कार।